हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 463। आदित्य की आंखें खुली और उसे अपने सामने सब कुछ बहुत ही ज्यादा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें भी पूरी नहीं खुल रहीं और उसे ऐसा लग रहा है अभी भी वो धुआं उसकी आंखों में भरा हुआ है। इसलिए धीरे से दोबारा उसने अपनी आंखें खोली और उन्हें स्ट्रेच करते हुए पूरी खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी पलकें बहुत भारी लग रही हैं। वो एक हल्की रोशनी वाला अंधेरा सा कमरा है, जो कि देखने में स्टोर रूम जैसा लग रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ खाली है। वो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आदित्य वहां पर अकेला है तो वो अच्छा खासा वो जगह बड़ी लग रही है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सामान भी वहां पर नहीं है। आंखें खुलते ही आदित्य ने अपनी जगह से हिलने डुलने की कोशिश की तो उसे अपने आसपास सब कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ और अपने हाथ पैर एकदम भारी और किसी चीज से बंधे हुए। फिर उसकी आंखें जब तक पूरी खुली तो उसने अपने आप को देखा तो वो एक बड़ी सी कुर्सी से बंधा हुआ था, और उसने जैसे ही आंखें खोली उसके सामने रखी उस बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो ऑन हुआ। उस वीडियो में एक बड़े से ग्लास बॉक्स में खड़ी हुई सुनैना उसे नजर आई, जो कि चारों तरफ से एकदम बंद था और उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। सुनैना एकदम हड़बड़ाती हुई चारों तरफ घूमकर देख रही थी और बार बार उस बॉक्स के शीशे पर हाथ मार रही है। साथ में वो कुछ चिल्ला भी रही है, क्योंकि उसके होंठ हिलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी एकदम घबराए हुए से हैं। लेकिन वो क्या बोल रही है ये आदित्य को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद उस वीडियो में साउंड ही नहीं है। वो वीडियो देखते हुए आदित्य एकदम तेज आवाज में चिल्लाया,
सोना, नहीं नहीं, मेरी सोना को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो?
फिलहाल वहां पर आदित्य के अलावा कोई भी नहीं है और वो एकदम हवा में ही ये सवाल करते हुए चिल्ला रहा है। और तभी उस वीडियो में उसने देखा कि वहां पर पानी स्टार्ट हो गया है और उसे चौकोर कांच के बॉक्स में एक जगह एकदम नीचे से पानी भरने लगा है, और वो देखकर आदित्य और भी ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि सुनैना लगातार चारों तरफ घूमकर उसे बॉक्स के शीशे पर अपना हाथ अंदर से मार रही है, और अब वो साथ ही नीचे से आते हुए पानी की तरफ भी देख रही है। उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गईं, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, डर और घबराहट की वजह से उसके माथे से पसीना भी निकल रहा है, लेकिन वो खुद को बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही है और उसकी ये मजबूरी उसके चेहरे पर भी नजर आ रही है। लेकिन उससे ज्यादा हेल्पलेस अगर कोई फील कर रहा है तो वो आदित्य, जो कि अपने सामने से सुनैना को इस तरह मुसीबत में देखते हुए भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। कुर्सी के हत्थे पर बंधे हुए अपने हाथों को खींचने की पूरी कोशिश करते हुए आदित्य बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया,
खोलो मुझे, मेरे हाथ, आ, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? सामने क्यों नहीं आती? ये सब करके भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर सोना को कुछ हो गया ना, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है या फिर तुम्हारी मदद कर रहा है, कोई भी नहीं बचेगा।
अपने हाथ पैर को रस्सी से आजाद करने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हुए आदित्य ने इतनी कसकर अपना हाथ खींचा कि उसके हाथ पैर की नसें एकदम तनी हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि जब वो दांत पर दांत रखकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा है तो उसके जबड़े भी एकदम कसे हुए लग रहे हैं, और गुस्से की वजह से उसकी गर्दन की नसें भी फूल गई हैं और उसकी आंखें भी एकदम लाल हो गई हैं। आदित्य के पूरा जोर लगाकर खींचने की वजह से वो रस्सियां कुछ हद तक ढीली हो गई हैं। दूसरी तरफ इस होटल के सिस्टम रूम में बैठी हुई दो लड़कियां स्क्रीन की तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं और उन्हें आदित्य की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। असल में वो दोनों लड़कियां नताशा और अवंतिका हैं, और नताशा ही वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, लेकिन इन सारे मास्टर प्लान के पीछे दिमाग अवंतिका का है। इतने गुस्से में आदित्य को लगभग रस्सियां तोड़ते हुए देखकर अवंतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। वो अपने खुले हुए मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ओ गॉड, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है, मुझे लग रहा है हमने सही नहीं किया, इस तरह आग में हाथ डालने से पहले हमें अंजाम सोचना चाहिए था। नताशा ने अपनी आईज रोल करने के बाद एक आईब्रो उठाते हुए अवंतिका की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्या? पहले तो तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड थी इन सब चीजों के लिए, तुम्हें भी अपने भाई का बदला लेना था, और अब बस सारी एक्साइटमेंट, वो बदले की आग और आदित्य सुनैना के लिए गुस्सा, नफरत सब गायब हो गई क्या? रिग्रेट माई फुट, अवंतिका सहगल को अपने किसी भी किए का रिग्रेट नहीं होता, और ये लोग तो यही डिजर्व करते हैं, आखिर ये सब शुरू इन लोगों ने ही किया है ना, खासकर ये सुनैना, सब कुछ इसकी वजह से ही शुरू हुआ है। मैं इसे कॉलेज में अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन इसने क्या किया, मेरे भाई के खिलाफ गई, उसका प्यार ठुकरा दिया, और उसका ये पति। इतना बोलते हुए अवंतिका की नजर आदित्य पर टिक गई, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ नजर आ रहा है, जिसे देखकर अवंतिका को मन ही मन कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है।
अवंतिका उसकी तरफ देखते हुए ये सोच ही रही है कि तभी नताशा ने सिस्टम के सामने लगे हुए माइक को ऑन करते हुए उसमें एकदम से बोला,
क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो माई लव, मैं तुम्हें इस तरह से देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज रिलैक्स करो। और मुझे पता था तुम इसी तरह का रिएक्ट करोगे, बस इसीलिए मुझे तुम्हें बांधना पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम हो कि?
वो आवाज़ सुनकर आदित्य का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। शट अप यू बिच, जस्ट शट अप, बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल, अब वक्त आ गया है सामने आकर दिखाओ अपना प्यार, और मेरे प्यार को अगर जरा सी भी खरोच आई तो फिर तुम नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा।
ओहो, क्यों तुम हमेशा इसी तरह की बातें करते रहते हो, और अपनी उस सो कॉल्ड बीवी को अगर बचाना चाहते हो तो सबसे पहले शांति से बांट जाओ और फिर हम आराम से बात करते हैं। मैं तो खुद तुम्हारे सामने आना चाहती हूँ और तुम्हें दिखाना चाहती हूँ अपना प्यार, लेकिन तुम हो कि एक नंबर की जालिम आदमी।
उस लड़की ने फिर से इस तरह से माइक पर बोला, लेकिन इस बार उसे आदित्य का कोई भी जवाब नहीं मिला। आदित्य ने गुस्से से घूरते हुए चारों तरफ देखा, क्योंकि उसे नहीं पता है उस कमरे में कैमरा और माइक कहाँ पर है और वो लड़की कहाँ से उसे देख रही है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है इस वक्त, और आदित्य के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि कैसे भी करके उसे बस अभी सुनैना को बचाना है। इसलिए उसने आखिर अपना पूरा जोर लगाया और रस्सी खींचते हुए एकदम कस के अपने हाथों को ऊपर से निकालने की कोशिश की, और उसके बाएं हाथ की रस्सी टूट गई और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, और उसने फिर से नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। जैसे ही आदित्य के हाथ की रस्सी टूटी, अवंतिका तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए बोली, ओ गॉड, रस्सी टूट गई, तुम लोग कैसे रस्सी बांधते हो, इतनी कमजोर रस्सी, अब अगर वो बाहर निकल आया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से।
बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही है, उसके माथे पर पसीना, उसकी आंखें भी स्क्रीन की तरफ देखते हुए हैरानी से बड़ी है, उसके शरीर कांप रहा है, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी मजबूत बंधी हुई रस्सियों से भी आदित्य ने खुद को अपना एक हाथ आजाद करवा लिया है। अवंतिका के इस तरह से घबराने पर नताशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाओ अवंतिका, बस तुम्हारी इतने में ही हालत खराब हो गई, पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अवंतिका उसे समझाते हुए बोली, हाँ, क्योंकि तुम शायद इस आदमी को इतनी अच्छी तरह से जानती नहीं हो जितना मैं जानती हूँ। तुम्हें नहीं पता इसने मेरे भाई का क्या हाल किया था, और अभी तक तो उसके सारे जख्म पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सामने से तो इससे पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने ये सारी प्लानिंग की थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हमारा प्लान सही जा रहा है, तो यहाँ से निकल लेने में ही अपनी भलाई है। मैं तो तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम भी छोड़ दो इन लोगों को, तो शायद ये तुम्हें माफ़ कर दे। सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है आदित्य का एक हाथ। कुर्सी से आजाद होते ही आदित्य ने अपने इस एक हाथ से दूसरे हाथ की रस्सियां खोल ली और फिर पैर की, और आजाद होते ही उसने कुर्सी को गुस्से में दीवार पर दे मारा, जिससे वो लकड़ी की कुर्सी एकदम टुकड़े टुकड़े होकर वहीं बिखर गई। स्क्रीन पर वो सब कुछ होता देख और उसके ऊपर से अवंतिका की ऐसी बातें सुनकर नताशा भी अब कहीं ना कहीं घबरा रही है, लेकिन वो अपनी घबराहट पर जीत पाना चाहती है। उसने अपने दोनों हाथों की कसकर मुठ्ठियां बंधी और अपना एक हाथ मेज पर पटकते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हारी तरह डरपोक और कायर नहीं हूँ, और तुम तो सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही हो, लेकिन ये मैं उसे पाने के लिए कर रही हूँ, और अब इतना नज़दीक आकर मैं उसे जाने नहीं दे सकती। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास और भी तरीके हैं अपना बदला लेने के, इसलिए फिलहाल मैं यहाँ से निकल रही हूँ। इतना बोलते हुए अवंतिका ने अपना सामान समेटा और वहाँ रूम से बाहर निकलने लगी। नताशा भी उसे नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे बस आदित्य से मतलब है। वो अभी भी यही सोच रही है कि सुनैना उसके कब्जे में है और आदित्य को नहीं पता कि वो कहाँ है। आदित्य ने सिर्फ उसे स्क्रीन पर ही देखा है, और सुनैना को इस तरह से अपने कब्जे में रखकर वो आदित्य को ब्लैकमेल करेगी और उसे अपनी मनमर्जी पूरी करवा लेगी। अवंतिका के वहां से जाते ही नताशा ने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा और अपने आसपास खड़े लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे कुछ कहा, और उसकी बात सुनकर वो सारे लोग अपना सिर हिलाकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आदित्य आजाद होते ही इधर उधर चारों तरफ देख रहा है। उसे चारों तरफ दीवार नजर आ रही है, दीवारों से लगे हुआ काफी सारा सामान और बॉक्स रखी हुई है, और उसे समझ गया कि दरवाजा जरूर इन्हीं में से किसी चीजों के पीछे है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई इस तरह से सामान दरवाजे के सामने रखकर बाहर कैसे निकाला होगा। इसका मतलब कोई खुफिया दरवाजा है वहां से आने जाने। आदित्य को स्क्रीन पर सुनैना दिखाई दे रही है, जिसके उस ग्लास बॉक्स में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और पानी घुटने तक आ गया है, और सुनैना भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है अपने उस ग्लास बॉक्स में भरता हुआ देखकर। क्रमशः